بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي وحضرات. کسی صاحب نے جو سوال کیا تھا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 32 کے بارے میں، کہو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اسی نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی، کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں بھی اور خالص تن آخرت میں. اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. سورہ اعراف مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران یہ نازل ہوئی تھی، اور قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ 7th سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کے مطابق یہ 39th سورہ بنتی ہے. اس میں کل 206 آیات ہیں، اور اس سورہ کی ابتدا، بلکہ یوں کہیے کہ یہ ان دو سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کو شروع کیا گیا ہے 4 حروف مقطعات سے بیوقت، الف لام میم سواد. اس کے ساتھ ہی صرف ایک اور سورت ہے جس کے شروع میں بیوقت 4 حروف مقطعات آئے ہیں. اور یہی ایسی سورہ ہے کہ جس میں جناب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ سے بیان ہوا ہے. اگر اس سورت کو ہم مکمل پڑھیں بجائے کسی ایک آیت کو لینے کے، تو اس سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ اس سورت میں رب تعالیٰ نے انسان کو ڈرایا ہے، انسان کو عبرت دلائی ہے کہ کسی طرح سے وہ رائے راست پر آ جائے. قرآن پاک میں جہاں بھی کسی چیز پر زور دیا گیا ہے، تو اس میں ایک خاص انداز اپنایا ہے رب تعالیٰ نے. جیسے اپنے بارے میں اس نے کہا، نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے اللہ کے. عام حالات میں تو جو فکرے کی کنسٹرکشن ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں رب تعالیٰ نے کسی چیز پر بہت زور دیا ہے، وہاں یہ اسلوب اپنایا ہے. تو اس سورہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو हमें यही असलूप नजर आता है कि यहां पे रबताला ने इसी असलूप के तहत हमारी तवज्जो दिलाई है उन चीजों की तरफ जो हम नहीं करते और उन चीजों की तरफ जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वहां बहुत एम्फेसिस ले किया है रबताला ने इन चीजों पर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को हालांकि सूरह बकरा में उसका बड़ी तफसील से बयान किया है उसको, लेकिन यहां फिर रिमाइंडर दे दिया कि हमारे जहन से महव ना होने पाए वो सारा किस्सा और हम उसे सबक सीखते रहें। इसी तरह ये आयत जो किसी साहब ने इसके बारे में पूछा था, अब इसको अगर देखें तो इसके अंदर यही असलूब इख्तियार किया है रबताला ने। कहो किसे हराम किया है? अल्लाह की जीनत को जो इसी ने पैदा की है। और किसे हराम की हैं पाकीजा चीजें खाने पीने की? कहो ये सब चीजें उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए। तो ये एम्फेसिस, मेजर एम्फेसिस ले किया अल्लाह ताला ने कि वो चीजें जो रब ताला ने हम पर हलाल की हैं उन्हें हम हराम न करें, जो हम पर हराम कर दी गई हैं हम उन्हें हलाल ना करार दें। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि रब ताला ने बहुत जोर दिया इस बात पर कि हम अल्लाह की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करें। जो चीज रब जायज करार दे दे हम उसको नाजायज करार न दें किसी तरह, और जिसको रब नाजायज करार दे दे हम उसे जायज न करें। तो अपनी बात को फोर्सफुली कहने का ये एक अंदाज है, एक अंदाज अपनाया। यह हमें उस वक्त तक नहीं समझ आ सकती जब तक कि हम पूरी सूरह को न पढ़ें। तो जब हम पूरी सूरह को पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है कि ये असलूब क्यों है ऐसा। इसलिए कि इस सूरह में इसी अंदाज में ये कहा गया कि लोगों पर अजाब नाजिल कर दिया गया, रात के वक्त अजाब आया, तो वहां इसका सही हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये असलूब ऐसा क्यों है इसमें। और इसका अगला हिस्सा कि कहो ये सब चीजें उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए दुनियावी जिंदगी में भी और खालिस आखिरत में। ये ईमान वालों के लिए खुशखबरी है कि जो चीजें मैंने, जो नेमतें मैंने पैदा की हैं, जो चीजें मैंने अता की हैं, जो ईमान ले आएंगे वो इन चीजों से इस्तफादा हासिल करेंगे इस दुनिया में भी। ये दुरुस्त है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो ईमान नहीं लाए हैं, वो इन चीजों को इस दुनिया में तो शेयर कर लेंगे लेकिन आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं होगा। वहां सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले ही रब की इन नेमतों से इस्तफादा कर पाएंगे जिन नेमतों से वो दुनिया में इस्तफादा करते थे। जो नेमतें ईमान वालों को दुनिया में हासिल थी आखिरत में सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए होंगी, वो नॉन बिलीवर्स के लिए नहीं होंगी। अगला हिस्सा इस आयत का है कि इस तरह तफसील से बयान करते हैं हम अपनी आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, जो रब ताला ने एक बात ये फरमाई कि इल्म वाला और बे इल्म कभी बराबर नहीं हो सकते, जानने वाला और न जानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। यह आयत उसको एक्सप्लेन कर देती है कि अल्लाह ताला ने जो कलाम उतारा है, जो हम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचा, जो लोग इल्म रखते हैं उस पैगाम की गहराई को वो पहुंच जाते हैं। उस कलाम में कही गई बातों की तह तक जा पहुंचते हैं। इसलिए जगह जगह, सिर्फ यही नहीं कहा गया, जगह जगह इस बात को रब ताला ने कुरान में कई जगहों पर वादे किया है कि इल्म वालों के लिए इबरत है इसमें, कि जो साहिबान इल्म है वो उसकी गहराई को पहुंचते हैं, उसकी असलियत को जानने लगते हैं, उनके लिए इल्म है। कई जगहों पर ये आयात हमने अहले इल्म के लिए उतारी हैं, इल्म रखने वालों के लिए उतारी हैं। कई जगहों पर यह है कि इन आयात में इल्म वालों के लिए इबरत है। लास्ट सीटिंग में या शायद उससे पिछली किसी सीटिंग में ये बात डिस्कस हो रही थी कि इस्लाम में तालीम पर बहुत जोर दिया गया है। जंगे बदर में जब मुसलमानों के पास वसाइल नहीं थे, बिल्कुल हथियार पूरे नहीं थे, सवारी पूरी नहीं थी, तो बज़ाहिर तो जरूरत इस बात की नजर आ रही थी कि जो जंगी कैदी पकड़े गए हैं जंगे बदर में, उन POWs से जजिया लेकर उन्हें रहा कर दिया जाए ताकि मुसलमानों की माली जरूरियात पूरी हो सकें। लेकिन ये सोच हम जैसे कोताह नजर लोगों के हो सकती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जलील कद्र रसूल, जो इमामुल अंबिया हैं, जो महबूब रब्बानी हैं, आपकी नजर बड़ी दूर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोग जो जजिया नहीं दे सकते वो दो मुसलमानों को तालीम दे दें और वो आजाद हैं। तो कुरान में रब बार बार वही इल्म वालों की बात करता है। तो इल्म का हसूल बहुत जरूरी है कि इस्लाम को समझने के लिए भी हमें इल्म की जरूरत है। हम ज़ाहरी मायनों को देखते रहेंगे, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो रब ताला ने बहुत सी जगहों पे कुरान में ये फरमा दिया है अहले इल्म का। तो ये आयात जो है इनके बारे में भी रब ताला ने यही कहा कि इन आयात में उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं वो हम बयान करते हैं उनके लिए। लास्ट इतवार उठने से पहले जो सवालात का सिलसिला था उनका सवाल नंबर 4 था कि अगर मुनासिब समझें तो बाबा साहब के मजार पर 9 और 10 मुहर्रम को आने वाले मजदूब का किस्सा मुकम्मल तौर पर बयान कर दीजिए। क्या वो मजदूब अब भी जिंदा हैं या उनकी जगह किसी और मजदूब या सालिक ने ले ली है? अभी मैं एक अर्ज कर रहा था कि कुरान को समझने के लिए इल्म का होना बड़ा जरूरी है। अब इल्म के हसूल में तकलीफें भी हैं और मेहनत भी है। हम लोग इंसानी फितरत के मुताबिक हम सभी ये चाहते हैं कि बगैर मेहनत के बगैर किसी कोई तकलीफ उठाए हमें इल्म हासिल हो जाए और उसी सिलसिले में हम जब किससे कहानियां पढ़ते हैं तो ये चीज हमें लुभाती बहुत है। जबकि इन किस्से कहानियों से इल्म हमें बिल्कुल हासिल नहीं होता। एक इम्कान जरूर पैदा होता है कि शायद ये किस्से कहानियां हमें इंस्पायर कर दें और वो इंस्पायरेशन भी कोई ज्यादा देर पा नहीं होती, एक आध दिन में महव हो जाती है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि हम अगर इन किस्से कहानियों में ना पढ़ें बल्कि जो लोग इसका मरकजी किरदार होते हैं हम इस बात से इंस्पायर हों कि वो अपनी मेहनत अपनी रियाजत में इतने पुर अखलास थे कि रास्ते में आने वाली तमाम तकालीफ को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया हंसी खुशी, लेकिन इल्म हासिल किया। जब हम किसी अल्लाह वाले की करामात पढ़ते हैं तो बजाय सर धुनने के हम उन करामात को पढ़ के इस तरह इंस्पायर हों कि हम उस अंदाज में मेहनत कर लें, तगदो कर लें और तकालीफ को हंसी खुशी बर्दाश्त कर लें ताकि हम उस मकाम पर जा पहुंचें, तो बजाय इसके कि हम बुजुर्गों की करामात पढ़कर सर धुनें, लोग हमारी करामात को पढ़ के सर धुनना शुरू कर दें। वो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन होगा जब हम इस बात पर नजर रखेंगे कि वो क्या चीज है जिसने इस बुजुर्ग को इस मकाम तक पहुंचा दिया। किसी साहब ने मुझसे बच्चे ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तालीम छोड़कर पुलिस में जाना चाहता हूं, ASI भर्ती होना चाहता हूं, तो आप दुआ कर दीजिए कि मैं ASI हो जाऊं। तो मैंने उस बच्चे से अर्ज की कि बेटा ये दुआ तो कोई मुश्किल नहीं है, दुआ तो कोई भी कर लेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी तालीम अधूरी छोड़ के एसआई हो जाएंगे पुलिस में? हर गुजरने वाले अफसर को आप सैल्यूट कर रहे होंगे, तो आपको अच्छा क्या लगेगा, क्या आप सैल्यूट करने वाले हों या सैल्यूट करवाने वाले हों? आप लोगों को सैल्यूट करें या लोग आपको सैल्यूट करें, आपको क्या अच्छा लगेगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे की समझ में बात आ गई। तो इसी तरह मैं ये अर्ज हमेशा करता हूं कि अगर कोई मुझसे कहे कि यह करामत आप पढ़िए, तो अल्लाह मेरे दिल में ये क्यों ना डाले कि बजाय इसके कि मैं ये करामत पढ़ के सर धुनूं, लोग मेरी करामात देखकर सर धुने, तो मैं उस मकाम पर क्यों ना जा पहुंचूं? उसका आसान रास्ता यह है कि उन्हीं बुजुर्ग के नक्शे कदम पर मैं चलना शुरू कर दूं, उनके पांव के जो निशान हैं, कदमों के निशान, उन निशानों पर पांव रखता हुआ आगे बढ़ता जाऊं, तो उस मकाम को जा पहुंचूंगा आसानी के साथ। फिर एक बात यह भी है कि सालिक बहरहाल मजलूब से बुलंदतर मकाम है, आपने कभी देखा होगा कि जो लोग अपने होशो हवास में नहीं होते उसमें जिस्मानी कुव्वत आम आदमियों की नस्बत ज्यादा होती है, वो एक आम आदमी की नस्बत ज्यादा बोझ उठा लेंगे, ज्यादा वजनी चीज को पुश कर लेंगे। तो हम उसकी सलाहियत से मुतासिर क्यों नहीं होते और ये कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं भी होश आवाज से आरी हो जाऊं ताकि ये ताकत मुझे हासिल हो जाए? इसलिए कि हम अच्छी तरह समझते हैं कि होश हवास में रहना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत होश हवास से आरी हो जाना। तो एक शख्स इश्के इलाही में यूं डूबा के अपने होश हवास खो बैठा, अब उसको यह अंदाजा नहीं है कि उससे क्या हरकत सरजद हो रही है, वो बेलिबास है, राह चलते हुए उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, या वो उस हाल में है जो रब ताला जैसे पसंद फरमाता है। तो एक कैफियत ये है। फिर जो मजजूब है उसकी जुबान से किसी के लिए अच्छे कलमात निकल रहे हैं, किसी के लिए नुकसानदेह कलमात निकल रहे हैं, उसको कोई होश नहीं होगा, वो जो चाहेगा वो कह देगा। इसकी निस्बत सालिक पर पाबंदी है रब ताला की तरफ से कि वो किसी के खिलाफ बद्दुआ नहीं कर सकता। सालिक से खल्के खुदा को फायदा है, नफा है, नुकसान नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, सबसे बेहतर शख्स वो है जिसकी जात से खल्के खुदा को नफा पहुंचे। तो यूं वो बेहतर शख्स है सालिक। वो क्या हरकतें कर रहा है, उसकी हर हरकत बावकार होगी इसलिए कि रब ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बावकार हैं। उसका उठना बैठना चलना फिरना गुफ्तगु सब बावकार होगी कि ये सुन्नत रब्बी है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो हमारे नजदीक बेहतर क्या है? हम अगर किसी मजजूब को आइडियलाइज कर लेंगे तो हम उधर को चल निकलेंगे। और अगर किसी सालिक को आइडियलाइज कर लेंगे हम तो हमारे रवैये बावकार होते चले जाएंगे। मुझे वो किस्सा बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं वो किस्सा बयान करने से पहले ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा था। ये सब चीजें इसलिए पेश आती हैं हमें कि हमारे कॉन्सेप्ट्स आज भी तसव्वुफ के बारे में क्लियर नहीं है। हम आज भी तसव्वुफ को, रूहानियत को मावराए फितरत कुवतों के हसूल को समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तसव्वुफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा गुजारने के असलूब की पैरवी करने का नाम है। एंड टू द एक्सटेंट ह्यूमनली पॉसिबल, अब इसका उर्दू में तर्जुमा जरा इस वक्त जहन से निकल गया मेरे, वरना मैं अर्ज कर देता कि जहां तक ह्यूमनली पॉसिबल है हम मकदूर भर कोशिश कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हूं। तसव्वुफ का बुनियादी मकसद यही है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा अमली कुरान है, वो नमूना है कुरानी अहकामात का अमली सूरत में, कि रब ताला अपने बंदे से किस तरह चाहता है कि वो जिंदगी गुजारे। अब जब हम सुन्नत की पैरवी करते हैं जिंदगी में तो हमें एक बात याद रखना चाहिए कि इस राह में दिक्कतें बहुत आएंगी। मेरे लिए झूठ बोल के किसी मुश्किल से निकल जाना बड़ा आसान होगा, लेकिन जब मैं आइडियलाइज करता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मैं झूठ बोल नहीं सकता। तो मुझे अगर कोई पूछे कि ये तुमने गलत काम किया तो मेरा इमीडिएट रिप्लाई ये होगा कि जी ये मैंने ही किया है। तो मुझे तकलीफ का सामना करना पड़ जाएगा। मेरे यहां मेहमान आ गया और मेरे पास खुद कुछ खाने को नहीं है, तो जो कुछ अवेलेबल है मेहमान को खिला दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को पेट भरा जाहिर कर दूं। जाहिर है कि मुझे एक और फाका बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिसालें दे के मैं जो बात वादे कर रहा हूं कि इस राह पर जब हम चलते हैं तो हमें हर हर तरीके से मार पड़ती है, लेकिन इसके इनामात बहुत बड़े हैं। जब हम साबित कदम रहते हैं तो फिर इनामात के भी हकदार हम ही होते हैं, यहां भी और आखिरत में भी। ये इंसाफ का सवाल है कि आपके लेक्चर्स 85 एंड 130 में नफ्स रहमानी पर डिस्कशन की गई है, जो बहुत फैसिनेटिंग है। तो आई हैव सम एडिशनल क्वेश्चंस। ए, नफ्स रहमानी शऊर और लाशऊर के दरमियान एक ब्रिज है। इस ब्रिज पर इंसान किस तरह खड़ा रह सकता है, इसको थोड़ा सा क्रैक कर लीजिए। नफ्स रहमानी ब्रिज नहीं है बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। बल्कि इसको यूं कहिए कि जब हम अपने लाशऊर पर पूरी तरह काबू पा लेते हैं, उसको हम अपनी कुव्वत इरादी का सबॉर्डिनेट कर लेते हैं, और अपने कॉन्शियस माइंड को हम ताबे कर देते हैं उन अहकामात का जो रब ताला ने जारी फरमाए हैं इंसान को जिंदगी के बसर करने के सिलसिले में। तो वो नफ्से रहमानी हो जाता है। मेरे नजदीक सबकॉन्शियस ज्यादा पावरफुल है बनिस्बत कॉन्शियस माइंड के। हमसे बैठे हुए जो हरकत अनजाने में नादानिस्ता तौर पर सरजद होती हैं, गुफ्तगु करते हुए जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर जाते हैं नादानिस्ता तौर पर, तो समझदार और अकलमंद लोग वहीं से हमारे बचपन का अहवाल जान जाते हैं कि हमने बचपन किन हालात में गुजारा है, वो किस तरह से, कि बचपन की सीखी हुई चीजें हमारे लाशऊर का हिस्सा बन जाती हैं, वो नहीं निकलती वहां से। कॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन कर लेते हैं बचपन के बाद के जो हमने तालीम हासिल की है, सीखा है लोगों से, एनवायरमेंट से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, तो उसके जरिए हम अपने कॉन्शियस माइंड को संवारते चले जाते हैं। तो वहां हमारा कंट्रोल पूरा होता है, लेकिन जब हम रवानी में गुफ्तगु कर रहे होते हैं तो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बैकग्राउंड का मजहर बन जाते हैं, जो हरकत हो जाती है हमसे। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं दे देता हूं कि एक आदमी की बैकग्राउंड हम्बल है, वो किसी साहब से मिले, खड़े बातें कर रहे हैं और बातें करते करते उन्होंने अपनी रवानी में एक जुमला अदा किया कि आइए आपको खाना खिलाऊं। एक और साहब हैं जो इसी तरह खड़े हैं, किसी साहब के साथ बातें कर रहे हैं और बातों की रवानी में वो एक जुमला कहते हैं, साहब आपने खाना तो नहीं खाया होगा, आइए इकट्ठे खाते हैं। एक तीसरे साहब हैं जो उसी कैफियत में खड़े हैं, उसी रवानी से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि साहब आप बहुत देर से यहां हैं, आपने यकीनन खाना नहीं खाया होगा, तो अगर आप हुक्म करें तो मैं खाना पेश करूं। अब ये तीन लोग हैं, इन्होंने बात की है, एक ही बात है, लेकिन इन तीनों बातों के पीछे उनका बचपन का गुजरा हुआ वक्त बोल रहा है। तो समझदार आदमी फौरी तौर पर भांप जाएगा कि इसकी बचपन की बैकग्राउंड क्या है, बहुत हम्बल है, वेल टू डू है, या बहुत अच्छी बैकग्राउंड थी, पढ़े लिखे लोग, खानदानी लोग हैं। तो इसी तरह अब ये आप हमारा लाशौर रूल कर रहा है असल में। तो नफ्से रहमानी के मकाम तक पहुंचने के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि हम अपने लाशौर को पूरी तरह से अपनी जबिल्लत के मातहत कर दें और जबिल्लत को हम ट्रेन कर लें अहकामाते इलाही के तहत, क्योंकि जब तक के जबिल्लत को ट्रेन न किया जाए, और वो ट्रेन हो जाती है। मैंने किसी गुफ्तगू में यहीं पर एक मिसाल दी थी, हम सब सिविलियंस यहां बैठे हैं मास्वा एक दो हजरात के जिनका ताल्लुक फौज से होगा, यहां धमाका हो तो हमारा पहला रिएक्शन, फौरी रिएक्शन ये होगा कि हम उठ के खड़े होके देखने की कोशिश करेंगे कि धमाका कहां हुआ, और उस प्रोसेस में हम सब जख्मी हो जाएंगे। लेकिन जो ट्रेंड फौजी है उसका फौरी रिएक्शन ये होगा कि वो जमीन पे लेट जाएगा फौरन, तो दो चार मिनट के बाद खड़ा होकर फिर देखेगा कि हुआ क्या था, वो सेफ रहेगा। इंसानी जबिल्लत को फौज की ट्रेनिंग ने मातहत कर दिया है उसके कॉन्शियस माइंड के, कि उस ट्रेनिंग के तहत फौजी ने इंसानी जबिल्लत पे अमल नहीं किया कि उठ के फौरी तौर पर खड़ा होकर देखा नहीं, बल्कि उसने उसे कंट्रोल कर लिया। तो जब हम जबिल्लत को कंट्रोल करते हैं, ट्रेन कर लेते हैं, और सब कॉन्शियस को हम अपने कॉन्शियस के मातहत कर लेते हैं, तो नफ्से रहमानी तक जा पहुंचते हैं। ब्रिज नहीं है वो, जो ब्रिज अगर होगा तो वहां कॉम्प्रोमाइजेज होंगी बिटवीन सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, क्योंकि ब्रिज हमेशा उस फासले को पाट देता है जो दो चीजों के दरमियान होता है। तो ब्रिज के दरमियान में अगर कोई खड़ा हो जाए बंदा, तो दैट मीन्स कि उन दोनों चीजों के दरमियान में कहीं खड़ा है। तो रब के अहकामात के बारे में हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते, हम चूजी नहीं हो सकते, वो इन टोटो फॉलो करना है हमें। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि नींद की कमी से इंसान नफ्स रहमानी तक पहुंच तो जाता है, मगर इमीडिएटली लाशाऊर में स्लिप कर जाता है, क्या नफ्स रहमानी पर कंट्रोल मेहनत करके हासिल किया जा सकता है या ये सिर्फ अताए इलाही है। ये इसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि नफ्स रहमानी तक हम पहुंचेंगे कैसे, वो सरासर मेहनत है, कंट्रोल है अपनी जात पर, अपनी जिबिल्लतों पर कंट्रोल है, अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल है। तो ये सब मेहनत की चीजें हैं, बगैर मेहनत के इसमें से कोई चीज हासिल नहीं होगी। अताए इलाही बेशक बरहक है, लेकिन अताए इलाही को रसीव करने के लिए भी एक मेहनत की जरूरत है। इंसान पहले से जो होश से पहले का जमाना है उसी से ही इस अंदाज में वो गुजर रहा होता है कि वो क्वालिफाई कर जाता है अताए इलाही के लिए कि रब ताला राजी होके उसको इनाम में नफ्स रहमानी बख्शते हैं। लेकिन अगेन वो पसंदीदा आदत, अब वो पसंदीदा चलन क्या होगा, उसके लिए जबर अपनी जात पर, अपनी जात पर कंट्रोल। अभी कल एक साहब मेरे पास तशरीफ लाए थे डेनमार्क से, सैयद, उनका फरमाना ये था कि मुझे कई चीजें बग कर रही हैं, बहुत परेशान कर देती हैं, बेचैन कर देती हैं। उन्होंने फरमाया कि एक तो ये चीज के मुझे ये एहसास है कि मैं लोगों को एनकरेज करता हूं कि वो मुझे एक्सप्लॉइट कर लें, मेरे रवैये ऐसे हैं कि लोग मुझे एक्सप्लॉइट करने के बारे में एनकरेज हो जाते हैं। तो और इसी तरह कुछ बातें बताई। तो उठते हुए मुझसे उन्होंने एक बात फरमाई कि मुझे रूहानियत का बहुत शौक है, इस राह पर मैं चल सकता हूं। तो मैं उनसे कह रहा था कि आप बिल्कुल 100% चल पड़ेंगे, इसलिए कि आप में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो इस राह पर चलने की रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स हैं, और उनमें एक ये है कि आप लोगों की ज्यादती और जबर को हंस के बर्दाश्त कर जाएं। जिसको आप ये कह रहे हैं कि लोग मेरे रवैये से एनकरेज होते हैं कि वो मुझे एक्सप्लॉइट कर लें, तो अंग्रेजी में कह रहे थे कि आई लेट पीपल एक्सप्लॉइट मी। तो जिसको आप ये बयान कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि ये उन चंद एक प्री रिक्विजिट्स में से एक है जो हमें रूहानियत की राह पर चलने की जिसकी जरूरत होती है। तो जब हम अपनी जात को मिटा देते हैं और हमारे लिए दूसरे ही सब कुछ होते हैं, एक छोटी सी बात है कि अगर आप में से कोई साहब मुझे गाली दें तो मेरा रिएक्शन ये होगा कि मैं माइक उठा के उसके सर में दे मारूं। अब इस रिएक्शन के साथ मैं अल्लाह की राह पर क्या चलूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे मौके पर कि किसी ने हर्जा सराई फरमाई की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिएक्शन ही शो नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन तो प्यार और मोहब्बत का था, लेकिन अगर अल्लाह मुझे तौफीक बख्श दे कि मेरे जहन में हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, तो जहां किसी ने मेरे साथ ज्यादती की तो बजाय इसको उस पर जवाबी वार करने के, मैं अगर उससे ये पूछ लूं कि भाई मैं माफी चाहता हूं, मैंने यकीनन आपको दुख पहुंचाया जो आपने ये रवैया मेरे साथ रखा, मेरे जहन में नहीं कि मैंने कब आपको दुख दिया, तो अगर आप मुझे पॉइंट आउट कर दें तो मैं आपसे एक बार फिर माफी मांग लूं और उसके लिए आपको कंपनसेट कर दूं। वो फकीर जो इता अता इलाही जिसको हुई है, अता हो गई रब ताला की तरफ से, वो उसके बचपन के रवैये ही यही होंगे। ये प्रीरिक्विजिट्स में से एक है। एक दरख्त है जिस पर फला हुआ पका हुआ फल लगा है, उस फल ने गिरना है टहनी से अब क्योंकि पक चुका। ये इंसान पर डिपेंड करता है कि उसके नीचे झोली फैलाए हुए वो एन वक्त पर पहुंचे कि जब वो फल टूट कर टहनी से नीचे गिर रहा है तो उसकी झोली बिल्कुल उसके नीचे हो और वो पका हुआ फल उसकी झोली में आन गिरे। तो मेहनत है कि उसको ये देखना है पका हुआ फल कहाँ है, और फिर वो इस अंदाज में दौड़ता हुआ आए कैन फल के नीचे पहुंचे और झोली फैला दे ताकि पका हुआ फल उसकी झोली में गिर जाए। तो अता इलाही के लिए भी आपको प्री रिक्विजिट्स चाहिए। बेहतर यह है कि हम नफ्स रहमानी के हसूल के लिए एफर्ट शुरू कर दें, वहां तक जा पहुंचे और रब राजी होके हमें उसका इनाम बख्श दे। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली इतवार बशर्ते जिंदगी इसमें बात होती है। अस्सलामु अलैकुम।